नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं, इन खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद आपको और श्रोताओं को नमस्कार।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। 23 अगस्त तक श्रीनगर स्थित डल झील पर होगा आयोजन। भारत के रुद्राक्ष पाटिल, अर्जुन बबूता और किरण जाधव ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में डायमंड हार्बर एफसी ईस्ट बंगाल एफसी को हराकर फाइनल में शनिवार को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से होगा खिताबी मुकाबला। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित किया। जम्मू कश्मीर में आज 3 दिवसीय खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज हो गया है। ये आयोजन 23 अगस्त तक श्रीनगर स्थित प्रतिष्ठित डल झील पर चलेगा। युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और खेल मंत्री सतीश शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 500 से अधिक एथलीट इन प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। ये महोत्सव केंद्र सरकार की खेलो भारत नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, आजीविका का सृजन करना और स्थानीय बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करना है।
पहले दिन 3 एथलीटों ने अलग अलग श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते। कश्मीर के मोहसिन अली ने 1000 मीटर कयाकिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उड़ीसा की रश्मिका साहू ने महिला वर्ग की 1200 मीटर कैनोइंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक, जबकि उत्तर प्रदेश के विशाल कुमार ने पुरुषों के 1000 मीटर कैनोइंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। डल झील उत्सवी रूप धारण कर रही है और पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कर रही है, जो एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक है, जब कश्मीर का ये रत्न एक राष्ट्रीय खेल स्थल में बदल जाएगा। स्पोर्ट्स कैन से बात करते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण के मीडिया सलाहकार सुमित्र बोस, जो इस समय श्रीनगर में हैं, ने कहा,
इस साल हमने 2 गेम्स को ऐड किया है। जो वाटर गेम्स है, ये आपका श्रीनगर का डल लेक में हो रहा है। जम्मू कश्मीर इज द ओनली स्टेट जिसके पास 2 खेलो इंडिया इवेंट हो गया। एक तो आपको पता है जो मार्च महीना में हमने खेलो इंडिया विंटर गेम्स की थी, जो गुलमर्ग में होता है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख मिलकर विंटर गेम्स करता है। इस बार जो आपका डल लेक में हो रहा है, इसमें 5 इवेंट हो रहे हैं। 5 इवेंट का में 2 इवेंट जो ऐसा है जिसमें 24 गोल्ड मेडल डिसाइडेड हो, उसमें आपका है रोइंग है और कायाकिंग एंड कैनोइंग है। और ऐसा दोनों इवेंट में, और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि ये पहला गोल्ड मेडल एक डल लेक का शिकारा वाला लड़का जीता है, मोशिन अली। सिमिलरली आपको डल लेक को ये गेम्स एक नया परिचिति देगी।
इस महोत्सव से न केवल एथलीटों और कोचों को बल्कि शिकारा मालिकों, हाउस बोट संचालकों और व्यापक पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को भी आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। स्पोर्ट स्कैन के लिए तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर।
तो श्रीनगर की डल झील जो है अब शिकारा और कहवे की चुस्कियों के बीच खेल का भी एक बड़ा केंद्र बनने को तैयार है।
जी बिल्कुल। और अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, खास करके कश्मीर की, तो ऐसा पहला राज्य बना है जहां खेलो इंडिया के 2 इवेंट शामिल हो गए। कोई राज्य ऐसा अभी तक नहीं है जहां खेलो इंडिया कैलेंडर की 2 स्पर्धा हुई है। अपने विंटर गेम्स भी गुलमर्ग में हुए, उसके बाद ये वाटर स्पोर्ट्स। और अगर हम एक बीच खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करें, तो 2025 में इस वर्ष जो खेलो इंडिया का कैलेंडर है उसमें 2 मुकाबले ऐड किए गए थे। एक तो बीच गेम्स था खेलो इंडिया, जो कि हो चुका है दीव दमन में, और दूसरा ये है। तो ये पहला है जो कि जिसको हम वाटर स्पोर्ट्स कह सकते हैं। और भारत सरकार की जो खेलो इंडिया नीति है उसके अंतर्गत जो सोच है भारत सरकार की, विशेषकर प्रधानमंत्री जी की, कि भारत जमीनी स्तर पर खेलों के विकास में जुड़े और आधारभूत संरचनाएं जो है वो कायम की जाए। जैसा कि आपको पता ही होगा शक्ति जी के अगला राष्ट्रमंडल खेल बहुत अधिक संभावना बढ़ गई है कि 2030 में फिर से भारत में हो। 2010 में हमने इसका पहला आयोजन किया था, फिर भारत ने 2036 के ओलंपिक के लिए भी दावेदारी की है। तो इसको देखते हुए पूरे देश में और खास करके 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां ज्यादा आधारभूत संरचनाएं स्थापित की जा रही हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि गुजरात है, उसके बाद उड़ीसा है और उसमें जम्मू कश्मीर भी है। चूंकि इस तरह के जो खेल होंगे वो जम्मू कश्मीर में ही आयोजित होंगे। तो एक सही बात आपने कही कि एक जिस खूबसूरती और पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता था पहले, अब निश्चित रूप से खेल के लिए जाना जाएगा।
जी बिल्कुल, जो प्राकृतिक संरचना है जो वहां पे जिसका फायदा मिल सकता था उसका बखूबी लाभ उठाया जा रहा है और खिलाड़ियों को भी हर स्तर पे इस प्रकार के बड़े मंच मिल रहे हैं। और अब रुक करते हैं निशानेबाजी का, जहां कजाकिस्तान में चल रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के रुद्राक्ष पाटिल, अर्जुन बबूता और किरण जाधव ने आज 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं जूनियर वर्ग में मानसी रघुवंशी ने महिलाओं की स्केट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि यशस्वी राठौर ने रजत पदक जीता। भारत के सीनियर निशानेबाजों ने अब तक 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तो निशानेबाजी में जितना भारत के सीनियर खिलाड़ी अपना लोहा मनवा रहे हैं उससे बराबरी पे खड़े होकर जूनियर खिलाड़ी भी प्रदर्शन कर रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि नई पौध है निशानेबाजों की। और वैसे भी आप देखिए कि सीनियर लेवल पर भी निशानेबाजी में अगर चाहे वो ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल हो, खेल हो, एशियन गेम्स हो, उसमें भारत अपना दबदबा पहले से कायम रख चुका है। क्योंकि निशानेबाजी एक ऐसी स्पर्धा है जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में जब भी भारत के निशानेबाज जाते हैं तो कम से कम पदक की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहती है। ऐसा ही इसमें भी हुआ है।
वहीं भारतीय महिला पहलवान तपस्या ने बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तपस्या ने कल फाइनल में नॉर्वे की फेलो सीटियास डोमोजेवा को 5-2 से हराया। महिलाओं की 68 किलोग्राम भार वर्ग में सृष्टि को फाइनल में जापान की रे होशिनो से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं आज भारत की श्रुति, सारिका और काजल ने अपने अपने भार वर्ग में सेमीफाइनल में जगह पक्की की। ग्रीको रोमन पहलवान सूरज ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया मलिक और रीना ने भी फाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की स्पर्धा में सुमित मलिक ने मंगलवार को 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया था। तो भारतीय पहलवान तो लगातार बड़े मंचों पर अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। बीच में थोड़ा सा एक खराब समय कह सकते हैं,
खराब समय। जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है। इससे ज्यादा बोलने की संभावना नहीं है यहाँ पर।
लेकिन अब गाड़ी वापस पटरी पर,
लेकिन पटरी पर है। और फिर जिन्होंने कुछ गलत कार्य किए या फिर जो भी हो उनको सजा मिली और फिर उसके कारण बहुत सारा कुछ देखने को मिला, लेकिन अब बहुत ही सकारात्मक तरीके से हम उधर ही लौट आए हैं जहां जिसके लिए भारतीय कुश्ती जानी जाती थी। ये अच्छी बात है।
जी बिल्कुल, जिस तरह के भारतीय युवा पहलवानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बड़े टूर्नामेंट पे और बड़े मंच पे भारत की कुश्ती वापस एक बार दुनिया को धोबी पछाड़ देने के लिए तैयार।
भारत तो एक मिट्टी का खेल है। ये भारत के जितने भी परंपरागत खेल हैं आप देख लीजिए, उसका पुनर्जनन हम देख रहे हैं कि लगातार हो रहा है। सारे खेल जो हैं आप देख सकते हैं कि काफी तेजी से उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जब हम बार बार हम लोग खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं, इन खेलों को आगे बढ़ाने में भी खेलो इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2016-17 से जब से खेलो इंडिया अभियान चला है, जूनियर लेवल पर भी अगर हम कह सकते हैं, यहीं से जो खिलाड़ी निकल करके फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, तो इसमें कुश्ती भी शामिल है।
प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप अपने 134वें संस्करण का विजेता पाने से महज अब एक मैच दूर है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
विश्व के तीसरे और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच गया है। शनिवार को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन के मैदान में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के बीच मुकाबला ये तय करेगा कि डूरंड कप के 134वें संस्करण का खिताब किसके नाम दर्ज होगा। कल इसी मैदान पर खेले गए टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में डायमंड हार्बर एफसी ने 16 बार की चैंपियन ईस्ट बंगाल एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार डूरंड कप के इतिहास में फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले खेले गए पहले सेमीफाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शिलोंग लाजोंग एफसी को 1-0 से हराया था। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने पिछले सत्र में खिताब जीतने के बाद एक बार फिर फाइनल तक पहुंचने के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। हाईलैंडर्स अपने खिताब की रक्षा करने और लगातार दो डूरंड कप चैंपियन बनने से बस एक मैच दूर है। वहीं डायमंड हार्बर एफसी ने सभी बाधाओं को पार करते हुए सेमीफाइनल में एक शक्तिशाली ईस्ट बंगाल टीम को हराया है। इस जीत के साथ उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को बता दिया है कि वे उन्हें कम न आंकें। डायमंड हार्बर एक जबरदस्त टीम है और फाइनल से पहले ही 3 ISL टीमों को हरा चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या इस टूर्नामेंट में डेब्यू कर रही डायमंड हार्बर एफसी खिताब अपने नाम कर सकती है या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपने खिताब को बरकरार रखकर इतिहास रचती है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो अब जिस मुकाबले का फुटबॉल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, बहुत ही जाना माना टूर्नामेंट है और अब फाइनल के लिए तैयारी पूरी है।
या बिल्कुल, जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व का तीसरा सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना ये टूर्नामेंट है और काफी प्रतिष्ठित है। और देखिए, इसमें ईस्ट बंगाल के बाहर हो जाने के बाद जो फाइनल मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। और हम जैसा देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल का दबदबा अब स्थानांतरित हो गया, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो दो टीमें जो हैं, हार्बर और नॉर्थ ईस्ट की जो टीमें हैं, इन दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलने वाला है। और अगर किसी भी फुटबॉल प्रेमी को मौका मिले तो इस फाइनल को मिस मत कीजिएगा।
और अब बात करते हैं शतरंज की, जहां स्प्रिंगफील्ड कप के तीसरे दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश और वाइल्ड कार्ड धारक अमेरिका के सैमुअल सेवियन के बीच कल बाजी ड्रॉ रही। भारत के आर प्रज्ञानंदा और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अबुसस्त्रोव के बीच भी मैच ड्रॉ रहा। प्रज्ञानंदा ने लगातार दूसरी बाजी ड्रॉ खेली, लेकिन इसके बावजूद वे अमेरिका के फेबियानो करुआना तथा लेवेन एरुनियन के साथ संयुक्त बढ़त बनाए हुए हैं। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देनों पर प्रतिबंध के बारे में है। इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये कदम है सरकार का, जिस तरह की स्थिति बन रही थी बीते।
बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इसके लिए हम सरकार को और सदन को, दोनों को बधाई देना चाहेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक शक्ति जी, आप देख सकते हैं कि एक अंदाजा है, मतलब कि 45 करोड़ लोग प्रतिवर्ष 22,000 करोड़ रुपए इस मनी गेमिंग में गंवाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह के गेम खेल करके अगर आप अपने पैसे बर्बाद करते हैं जिससे आपका कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, तो इस जो आर्थिक स्थिति पर देश का सीधा असर पड़ रहा है और आपके घरेलू स्थिति भी खराब हो रही है। आप गेम हार करके जब घर में जाते हैं पैसा गंवा करके, तो घर की स्थिति क्या होती होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो 45 करोड़ लोग अगर हर साल इस गेमिंग में इन्वॉल्व हैं और 22,000 करोड़ रुपए की क्षति हो रही है उनकी, देशवासियों की, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है और सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो काफी नुकसान हो रहा था। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है। ई स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो गेमिंग है उन दोनों को छोड़ करके जितनी भी ऑनलाइन मनी गेमिंग है सब पर प्रतिबंध लगेगा। और देखिए कितना बड़ा जुर्माना लगाया गया इसमें, कैद है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना खेलने वाले को, उल्लंघन नियम का उल्लंघन करने वाले को। और ये भी कहा गया है कि इसका आप देखते होंगे कि प्रचार प्रसार काफी ज्यादा विज्ञापन होता था, विज्ञापन के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जाता था। तो जो विज्ञापन इस तरह का प्रकाशित या फिर ब्रॉडकास्ट करेंगे उनके लिए भी चेतावनी है संसद की तरफ से कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको भी जेल हो सकती है और कम से कम 50 लाख का जुर्माना हो सकता है। तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है। उच्च सदन में हालांकि भारी हंगामे के बीच ये पारित हुआ है, लेकिन चूंकि नंबर्स थे सरकार के पास, और मैं तो ये कहूंगा कि मुझे जब से इसके बारे में खबरें आ रही थी तब से मैंने इसका काफी अध्ययन किया, तो मैं इस अंदाजे पर पहुंचा था कि इससे बहुत ज्यादा फायदा भारत को और भारत की अर्थव्यवस्था को होने वाला है।
जी बिल्कुल, एक बहुत ही साहसिक और एक बहुत ही बेहतरीन कदम। उधर मिजोरम में सरकार 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों को देखते हुए एक मजबूत खेल संस्कृति के निर्माण में जुटी है। एक छोटा राज्य होने के बावजूद मिजोरम में एक मजबूत खेल स्थिति है, खेल संस्कृति बनी हुई है। सरकार ने राज्य में जमीनी खेल विकास कार्यक्रम GSDO शुरू किया। आइजोल में आज इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राज्य के खेल मंत्री श्री लाल निगरों लोवा हमार ने कहा कि यह कार्यक्रम मिजोरम राज्य खेल परिषद के सहयोग से समग्र शिक्षा मिजोरम की एक पहल है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों में 46 केंद्र खोले जा रहे हैं जहां 9 खेल विधाएं लागू की जाएंगी। और श्रोताओं समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। शबाब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपका।
और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।